मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, लता जी नहीं रहीं और लता जी के नहीं रहने के कारण पूरे हिंदुस्तान की आज जो आंखें हैं डबडबाई हुई हैं, गला रूंधा हुआ है और दिल और दिमाग में एक विचित्र किस्म का ऐसा सूनापन व्याप्त हो गया है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी। लता जी का जो स्थान है हिंदुस्तान के दिमाग में, छोटे से लेकर के बड़े तक के दिमाग में, दरअसल एक गायिका का स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि शायद सुर साधिका का भी स्थान उतना नहीं है जितना कि सुरों की देवी के रूप में उनका स्थान मौजूद है। सच पूछे तो उनके गानों में, उनकी आवाज में जो खनक थी, आत्मा से निकलती हुई वह आवाज जब हम सबके कानों से होती हुई हम लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचती थी, तो उसका स्वरूप, चाहे वह गीत किसी भी भाव का क्यों न हो, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि मंदिर में बजने वाली घंटियां हों। मित्रों, मैंने कहा सुर साधिका, सच पूछिए तो जो सुर शब्द है उसका मतलब क्या है? एक मतलब होता है देवता, सुर और असुर की लड़ाई। जिसने अपने आंतरिक ध्वनियों को साध लिया हो उसका सुर सध जाता है और जिसका सुर सध जाता है वह देवता बन जाता है। तो यदि इस लिहाज से लता जी को संगीत की अगर देवी कहा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी मायने में कोई बहुत बड़ी बात कही जा रही हो। सच यह है कि जिसके वे योग्य थीं, शायद इस शब्द का इस्तेमाल करके हम उनके प्रति उऋण होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने को उन सौभाग्यशाली लोगों में मानता हूं जिन्हें लता जी के दर्शन, जी हां, मैं इस शब्द को अंडरलाइन करना चाहूंगा, लता जी के दर्शन करने का मौका मिला। मुझे फिलहाल वो घड़ी याद आ रही है जब दिल्ली के विज्ञान भवन में वे दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने आई थी और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई थी वैसे ही वो पूरा का पूरा विज्ञान भवन तड़तड़ तड़तड़ तालियों की गड़गड़ाहट से भर उठा था। कितनी देर तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही और फिर लता जी जब अपनी सीट से उठकर मंच के सामने पहुंची तो वह दृश्य मेरे आंखों के सामने जीवंत है। जब उन्होंने अपनी साड़ी को थोड़ा सा उठाते हुए अपनी चप्पलें निकाली, मंच को प्रणाम किया और फिर वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने गई और जैसे ही वो अवार्ड लेने के लिए खड़ी हुई थी पूरा मंच और साथ ही साथ जो दर्शक वृंद थे, पूरा का पूरा हॉल उनके सम्मान में उठकर खड़ा हो गया था। मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने कामों के जरिए लोगों के दिल और दिमाग में इस कदर बस जाए कि वह उसकी अनिवार्यता बन जाए, बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए मैंने कहा कि जो लता जी थी वो सुर साधिका थी, कर्म योगी थी, कर्म करती थी। उन्होंने कहा ही है कि मेरी पहचान जो है वो मेरी आवाज ही है और आवाज उनका काम था। इस तरह से वो कर्म योगिनी थी। लेकिन दोस्तों, जो उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने अपने कर्म में भाव को शामिल करके उस कर्म को बहुत गहरे भक्ति या यूं कह लीजिए कि पूजा में तब्दील कर दिया था। चप्पल उतार कर मंच पर जाकर अवार्ड लेना भरी सभा में, आप सोच करके देखिए कि उनके किस भाव बोध को व्यक्त करता है। कहा जाता है कि जब वो रिकॉर्डिंग करने जाती थी तब कभी भी उन्होंने चप्पल पहनकर रिकॉर्डिंग नहीं की, हमेशा चप्पल रिकॉर्डिंग रूम के बाहर उतार कर जाया करती थी। लोग ये भी बताते हैं कि जब भी घर में कोई उनके मिलने आता था तो वो दो स्थान उन्हें दिखाने के लिए जरूर ले जाती थी। एक स्थान जहां उन्होंने अपने माता पिता का चित्र लगा रखा है और दूसरा स्थान जो उनका आराधना स्थल था, पूजा घर था। ये बताता है कि भाव बोध के स्तर पर वो अपने संगीत को, अपने गीत को कितने गहरे रूप में जिया करती थी। दोस्तों, खासकर यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सन 1965 के आसपास जो लोग टीन एज में एंटर कर रहे थे, मैं अपनी पीढ़ी के लोगों की बात कर रहा हूं, और वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, मुझे लगता है कि अगर उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, खासकर बौद्धिकता और यदि भावनात्मकता का डीएनए टेस्ट हो सकता हो, तो मैं दावा कर सकता हूं कि सभी के डीएनए में लता मंगेशकर की आवाज निश्चित रूप से मिलेगी। देखिए, जो प्रेम का भाव होता है हर पीढ़ी में होता है, हर पीढ़ी के अपने जो सामाजिक स्वरूप होते हैं उसी के अनुकूल आप अपने प्रेम के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है और मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूं कि जो लता जी की आवाज थी वो हम जैसे लोगों के लिए एक तरह से वेंटिलेशन का काम करती थी, क्योंकि प्रेम की अभिव्यक्ति उस समय के समाज में आप नहीं कर सकते थे। तो क्या करेंगे, भावनाएं हैं, अंदर छटपटाहट है, घुटन सी है, अब वो घुटन निकलेगी कैसे। तो दो ऐसे महान गायक जिसमें एक लता जी थी और दूसरे मोहम्मद रफी, इन्होंने मेरी पीढ़ी के लोगों को उस समय एक तरीके से इस घुटन से मुक्ति दिलाई है। अगर सहलाने वाली आवाज सुननी है, अगर लहराने वाली आवाज सुननी है, अगर खनखनाने वाली आवाज सुननी है, अगर रेशमी आवाज सुननी है, अगर उत्साह के आवाज सुननी है, अगर निराशा में डूबी आवाज सुननी है, अगर विछोह देखना है, विछोह को महसूस करना है, अगर अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है, तो लता जी मौजूद थी। लता जी की आवाज के जरिए आप अपनी भावनाओं को आवाज दे सकते थे। दोस्तों, ये कम बड़ी बात नहीं है कि आपकी अपनी आवाज हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की आवाज बन जाए। क्या ये कोई सरल बात सी लगती है? और इसके लिए जिस साधना की जरूरत होती है दोस्तों, वह साधना लता जी ने की। और मुझे लगता है कि यदि हमें लता जी के प्रति सच में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, तो हमें भी अपने अपने कर्मों के प्रति इस तरह की ही साधना करनी चाहिए, और ऐसा करके हमें उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनकी अब पावन स्मृति जो हम सबके हृदय और दिमाग में मौजूद है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार।